मुश्किल अल्फाज की वजाहत और उनके मादाजात। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 23। वकदा, इसका रूट क्या है? काफ द्वाद या और मैनी है, फैसला कर देना, और काजी से आप इसको याद रखें। ताबुदु आयन बादाल, इसके तीन मानी आप याद कर चुकी हैं ना, पहले दिन जैसा पढ़ा था। पूजा, पूजा परस्तिश नंबर एक, नंबर दो जो है वो नौकरी करना, और नंबर तीन हाँ यानी अतात और बंदगी। इयाहू, इया भी आप पढ़ चुकी हैं ना, अय्यू इसका वही रूट है, और ये कलमा हसर है। कलमा हसर क्या होता है? जैसे जैसे ही के लिए आता है ना, जैसे आप कहती हैं मैं सिर्फ आप ही से मोहब्बत करती हूँ, जैसे बच्चा माँ से कहे आप ही से, तो मसलन एक लाइन खींच कर कह दिया जाए कि बाउंड्री आपकी लिमिटेशन बस यहां तक है, इतनी ही, तो कलमा हसर यानी लाइन खींच कर या अपनी किसी बात के जरिए जो है वो कहना कि इतना ही है ये। जैसे इन्ना माँ भी, इसके सिवा कुछ नहीं, बस यही है, तो इयाहू उसी की। वबिल वालिदैनी, वो लाम दा, वो लाम दाल, और वलदा, अगर वलद हो तो लाम पर जबर हो तो ये बेटे के लिए आता है, और लाम के नीचे जेर हो और वो के बाद अलिफ आ जाए वालिद तो फिर ये बाप के लिए आता है। तो असल में ये वालिद है, वालिद एक है ना, लेकिन या नून आगे आ गया तो दो वालिद हो गए, तो मुराद इसे माँ और बाप दोनों हैं, तो ये वालदैन के लिए ये फिर तस्निया का सिगा इस्तेमाल होने लगा। यबलू गन्ना, बालाम गैन, बलागा, पहुंचना, और नून जो है इस पर शद है और ये ताकीद के लिए आया है। फिर इसके बाद है, आप देखें कि पिछले सबक में आपने कहा, आपको ये कहा था कि आप गर्दान याद करें, हु हुमा हूं, हा हुमा हुन्ना। अब आप देखें कि यहाँ पे हुमा की जमीर कितनी आई है ना, हुमा जो है ये तस्निया का सिवा है। आप आयत नंबर 23 में जरा गिने कितनी दफा आया है हुमा का सिगा, तो अहदु हुमा उन दोनों में से एक, हुमा जब भी आएगा तो उन वो दोनों की बात हो रही है, यहाँ दोनों कौन है? वालदैन, माँ और बाप की बात हो रही है ना, और अहद एक को कहते हैं, तो अहदु हुमा उन दोनों माँ बाप में से एक, औ किला हुमा, किला हुमा का लफ्ज जो है ये आपके लिए नया लफ्ज है, और किला जो है ये किसे कहते हैं, ये तस्निया का मानी देता है, और हालत रफई में ये किला होता है, और एक और हालत होती है अराब की हालत की बता रही हूं, अराब बदल जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे किला है, और ऐसे भी हो सकता है कि किले, जैसे कलमे नहीं लिखते तो काफ लाम और या आएगा किले, तो ऐसे भी लिखा हुआ आता है, तो किला का मोनस जो है किलता होता है, और एक मोनस की हालत किलते भी होती है, किलते यानी दो औरतों की बात हो, तो जैसे अब आगे आप कुरान में पढ़ेंगी किलतल जन्नतैनी आतत उकलहा, सूरत कहफ में आप पढ़ेंगी ये, इसकी मिसाल अगली ही सूरत है कहफ ना, उसकी आयत नंबर 33 है, किलतल जन्नतैनी, और जन्नत चूंकि बाग है, बाग मोनस होता है वहां पे, अब जन्नत आई नहीं, कितने बाग हुए? दो बाग, तो वहां पे किला नहीं आया, किलता आया, क्योंकि बाग मोनस है तो किलता, तो मोनस के लिए फिर दो की अलामत किलता होगा। आप परेशान तो नहीं हो रहे इस बात से? परेशान नहीं हो आप, तो बहरहाल हाँ मोनस और मुजक्कर की बात है, ठीक है, अच्छी बात है, तो किला का लफ्ज जो है ये मुजक्कर के लिए है, और किलता जो है ये मोनस के लिए है। तो बहरहाल ये तस्निया के लिए जो है ये लफ्ज किंता का इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद फरमाया, अब आप देखें कि अहदुहुमा, किलाहुमा और फिर हुमा आ गया, फिर लाहुमा आ गया। अब उफ जो है ये एक लफ्ज और ये आपको आता है, उफ आता है ना आपको, कैसे हर वक्त उफ करती रहती है, उफ उफ ये मुसीबत, उफ ये बच्चे, उफ ये फोन, इसकी घंटी बजी और उफ उफ ये दरवाजे की बेल, और पता नहीं कब कब आप उफ कहती हैं। तो आज इसको समझे कि उफ है क्या। इसका रूट है अलिफा फा, और ये जो है ये छोटी सी चीज को कहते हैं, हकीर सी चीज को कहते हैं, हर गंदी काबले नफरत चीज, किसी बुरी चीज से इजहारे नफरत करने के लिए। उंगलियों पर जमा हुआ जो मैल होता है ना, आप देखें बाज औकात आप सब्जी काटती हैं, आप काम करती हैं घर के अंदर बहुत, तो जो आपकी उंगलियों की लाइनें हैं ना, इनका रंग बदल जाता है। तो उंगलियों पर जो जमा हुआ मैल है ना, उसको भी उफ अरबी जबान में कहा जाता है। फिर नाखून का जो मैल कुचैल है, नाखूनों के अंदर भी मैल कुचैल होता है ना, बाज लोग नाखून बढ़ाते हैं और समझते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ये मकरूह है क्योंकि अंदर गंदगी रहती है ना। अब आटा भी गूंद रही हैं, आप वुजू भी कर रही हैं, रफ़ हाजत आप करके उस जब सफाई करते हैं तो नाखूनों के अंदर मैल होता है ना, तो अगर उस नाखूनों को काट दिया जाए तो मैल भी सारा चला जाता है। तो बहरहाल नाखून का जो मैल कुचैल है उसको भी उफ कहा जाता है। फिर कामूस, ये एक डिक्शनरी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि नाखून का तराशा और रेजे। अब नाखून काटती है ना, बहुत बारीक बारीक नाखून कटते हैं और गंदे भी होते हैं अंदर जो मैल वगैरह होती है, तो उनकी बारीकी की वजह से, उनकी गंदगी की वजह से उसको भी उफ कहा जाता है। कान के अंदर भी मैल होता है ना, कान के मैल को भी उफ कहते हैं अरबी जबान में। और अब आप देख लें कि आपने उफ के मानी पढ़े, आते थे आपको ये मानी पहले, और आप कितनी कसरत से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अरबी जबान में इसके माने कितने जबरदस्त है। और मैंने भी जब पहली दफा इनको पढ़ा था, मुख्तलिफ डिक्शनरियों से इस लफ्ज को मैंने ढूंढा, मुझे बहुत ज्यादा इस बात का जो है वो एहसास हुआ कि हम ऐसे ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और देखें उसके अंदर कितनी वसत पाई जाती है। तो उफ जो है ये कलमाए हकारत है, कलमाए नफरत है, और छोटी चीज के लिए इस्तेमाल होता है, कलमाए किल्लत भी कह सकते हैं इसको, किल्लत का मतलब क्या है, छोटी चीज, कलीन चीज के लिए। और इसी तरह इसको बाज औकात इसको अरबी लोग तुफ भी कहते हैं, आप कहते हैं ना तुफ है तुझ पर, तो तुम भी ये उसी तरह से है, कलमाए कराहत और नफरत, नाखून का मैल वगैरह। तो निचोड़ के तौर पर फिर हमारे सामने उफ के क्या मानी आए कि उंगलियों पर जमा हुआ मैल नंबर एक, नंबर दो नाखून का मैल कुचैल, नंबर तीन नाखून का तराशा रेजे, और नंबर चार कान का मैल, और नापसंदीदा चीज के लिए ये इस्तेमाल होता है। कुरान में नापसंदीदा चीज के लिए छह लफ्ज आए हैं, एक है मकरूह, दूसरा है इद्दा, ये आप आगे सूरत पढ़ेंगी कहफ में, मुनकिर आप पीछे पढ़ चुकी हैं, चौथा है इम्र, और पांचवा है मजूम, और छठा है उफ। तो नापसंदीदी में उफ जो है सबसे हाई लेवल पर है। फिर है वला तनहर हुमा, तनहर जो है मुनहारा इसका रूट है, इसके लफ्जी मानी है खून का जोर से बहना, पानी का जमीन पर बहकर अपने लिए नहर बना लेना, इसी तरह नहर खोद कर जारी करना उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो समझ आ गई, आप नहर, नहरें इस्तेमाल करते हैं, तो खून जब जोर से बहता है तो अपने लिए जैसे एक जगह बना लेता है, पानी जब जमीन पर बहता है तो फिर अपने लिए जैसे जमीन की मिट्टी को उखेड़ उखेड़ कर अपने लिए एक जगह बना लेता है। तो नहर को खोदने के लिए भी और पानी का जमीन पर बहकर अपने लिए नहर बनाना उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही ये लफ्ज जो है ये झिड़कने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें कि जब नहर जो है वो खोदी जाती है तो क्या किया जाता है, खोदा जाता है, डिगिंग की जाती है। इसी तरह जब किसी को कोई झिड़कता है तो क्या होता है कि उसको जो है उसके दिल पर डिगिंग होती है, उसके दिल को जैसे किसी ने खोद लिया, उसके दिल पर जख्म कर दिया। तो नेजे के जख्म के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अनहरा, तो साइल को झिड़कना। उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है नहरा, झिड़कना और डांटना। अब समझ आ गई? आप कहेंगे एक तरफ नहर है दूसरी तरफ झिड़कना है, मुनासबत क्या है कि जमीन जो है उसकी मिट्टी जो है उसको खोद कर नहर तैयार होती है ना, तो इसी तरह जब किसी को झिड़का जाता है ना तो उसके दिल में जख्म हो जाते हैं, उसकी तबीयत जो है वो मुतासिर होती है, परेशान होती है। फला तनहर, वहां पे आप कुरान में ये पढ़ेंगी, ये सूरत अद्दुहा है उसमें भी आप ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी है वला तनहर हुमा, के इन दोनों को मत छिड़को, वकुल्लहुमा कौलन करीमा। तो ये जो करीमा लफ्ज है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसका रूट है काफ रा मीम, काफ रा मीम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। काफ रा मीम कहते किसको हैं? असल में ये अंगूर की बेल के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है, और अरबों के यहाँ अंगूर की बेल जो थी वो कसीरुल मुनाफे समझी जाती थी। कैसे? कि वो उसका फल भी खाते थे और अपने बागों के इर्द गिर्द उसकी बाड़ भी बनाते थे, फिर उसे वो शराब भी बनाते थे। तो वो अंगूर की बेल जो थी वो उनके यहाँ कसीरुल मुनाफे समझी जाती थी, उसको तो बहुत ज्यादा अच्छा समझते थे। तो इसी तरह उनके यहाँ अल करीम लफ्ज इस्तेमाल होता है हर उस चीज के लिए जो अपनी नौइयत में दूसरी सब चीजों से ज्यादा जो है वो अच्छी हो, सबसे ज्यादा अच्छी हो। इन अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, है ना। तो अगर किसी की जो है वो सखावत का जिक्र करना हो तो भी वो कहते हैं कि वो तो करीम है, तो अल्लाह करम करेगा या करीम है। तो अल्लाह के एहसान और इनामात का जिक्र करना हो तो भी जो है ये सिर्फ जो है इसका इस्तेमाल होता है। इसी से आप इसकी फैमिली के क्या लफ्ज है और तकरीम, तकरीम करम करामत इकराम, और यहां पे जो है वो करीम और लोग नाम भी रखते हैं, मुकर्रम शाबश बैतुल मुकर्रम। आयत नंबर 24 है वक्फिद, वक्फिद खाफा द्वाद, इसके मानी है झुकाना नीचे करना, इसकी इसका ऑपोजिट है रफा, रफा के मतलब होता है ऊपर उठाना बुलंद करना, और अल्लाह के नाम है खाफिद, खाफिद और राफे। अल्लाह जो है झुकाने वाला भी है और उसके साथ बुलंद करने वाला भी है, जैसे बनी इसराइल को अल्लाह ने बुलंद कर दिया और फिरौन जो खुद से समझ रहा था कि मैं बहुत ऊंचा हूं, अल्लाह ने उसको जो है वो खाफिद कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलंद किया, उनके भाइयों को जो है वो नीचा कर दिया। तो अल्लाह की सिफत है खाफिद और राफे। अच्छा, ये जो खाफा द्वाद है खाफा द्वाद, इसके मानी होते हैं नीचा करना झुकाना, और यहां पर आप देखें कि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वक्फिद, और तू झुका दे, और तू झुका दे। अच्छा, झुकने के लिए भी हमें कुरान में मुख्तलिफ लफ्ज मिलते हैं ना, जैसे एक है नजर और आवाज झुकाना, नीचे करना तो गद्दा, गद्दे बसर, गैन दुआद दुआद। फिर दूसरा है सर को झुकाना, तो रका रकू करना, आता है ना आपको ये। फिर तीसरा है नकासा, लाजवाब होकर नदामत से सर झुकाना, ये एक लफ्ज भी है। और फिर इसी तरह जीम नूनहा जनाहा, किसी एक तरफ को झुकना, परिंदे का पर इंसान के पहलू को भी कहते हैं, क्योंकि इंसान क्या करता है कि अपने कंधे से एक तरफ को झुकता है ना, कंधे से मूवमेंट होती है, इसी तरह परों से परिंदे ऊपर नीचे होते हैं, तो परिंदे के पर के लिए भी इस्तेमाल ये लफ्ज होता है। और जनाहा अगर आए तो भलाई की तरफ झुकाओ है, कायदे आजम मोहम्मद अली जना। दोबारा जनाह आए तो भलाई की तरफ झुकाओ है, और जुनाह आए जीन पर पेश आए तो बुराई की तरफ झुकाओ है। तो यहां पर क्या है कि खा फा दुआद, और इसका मतलब है कि झुकाना, नीचे करना, आगे है जनाह आ गया। अब आप देख लें कि ये भी झुकना है, लेकिन किसी एक तरफ झुकना, इंसान के पहलू का या बाजू का या परिंदे के पर का एक तरफ को झुकना। दुल आ गया, दाल लाम लाम। दुल जो है इसका मतलब होता है किसी दबाव की वजह से झुकना, ताकतवर के सामने जलील होना और रुस्वा होना, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। और जिल्लत ना दो तरह की होती है, एक तो आप ताकतवर के सामने जब झुकते हैं तो ये रुसवाई है, दूसरा ये कि किसी की इज्जत की वजह से जो है उसके सामने झुकना। तो ये जो है ना ताकतवर के सामने झुकना, ये जिल्लत गिरा देती है इंसान को। लेकिन जो दूसरी जिल्लत है कि कोई भी कमजोर है तो उसके सामने आप झुक गए, जैसे बच्चा है आप उसके सामने झुक गए, और या किसी की मदद आप करना चाह रहे हैं, उसकी ज्यादती भी देख रहे हैं, आपकी ग्रेटनेस है कि आप उसके सामने झुक गए। तो ये दोनों तरह ये लफ्ज जो है इस्तेमाल होता है, यानी जुल का लफ्ज जो है वो झुकने के लिए इस्तेमाल होता है। जिल्लत जलील ये बुरे मानों में भी है, और उसके साथ जो है वो अच्छे मानों में भी है। यहां पर ये अच्छे मानों में इस्तेमाल हुआ है, जनाह जुल्ली, इसके मानी क्या है कि नरमी और रहम के साथ उनके आगे झुको, ग्रेटनेस के साथ, इज्जत के साथ, वालदैन है ना तो उनके साथ इज्जत के साथ जो है वो झुको। रब्बा यानी इसका रूट है रा बाबा, तो रब एक है ना, तो कौन है अल्लाह ताला। और वैसे ये रब की सिफ्त आम लोगों के लिए भी इस्तेमाल होती है, जैसे अहले अरब जो है वो किसी कोई मालिक मकान है तो उसको कहेंगे कि वो हमारा अरबाब है, अरबाब जो उसका ऑफिसर है उसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो असल में यहाँ पे रब्बा या ये जो है ना रब्बा या था, तो रब्बा रब्बा यान था ना, तो तस्निये का सीगा है कि इन दोनों ने पाला मुझको, कौन दोनों, वालदेन। तो आप देखें तो रब्बा यान था, या के ऊपर या के साथ जो अलिफ है ये तस्निये की है, दो की है, और साथ में फिर नून, तो इन दोनों ने पाला मुझको। सगीरा स्वाद गैन रा, सगीरा का ऑपोजिट क्या है, कबीरा। सगीरा का ऑपोजिट है कबीरा, पीछे आपने जो है वो कबीरा लफ्ज पढ़ा है आयत नंबर 9 में, अन्ना लहुम अजरन कबीरा, तो ये इसका ऑपोजिट वहां पे आपने पढ़ा, यहाँ पे सगीरा है। आलम हुआ आ गया, फिर अलग करती जा रही है ना आप, आलम हुआ आ गया, अफालू के वजन पर है तो ज्यादा इल्म रखने वाला। नफूस नफ्स वायद है, नफूस जमा है, और ये मुजक्कर होता है कि मुअन्नस, मुअन्नस होता है, मुअन्नस होता है। सवालहीना सवालहुन वाहिद है, सवालहीन जमा है, और लिल अव्वाबीना لل اوابینا جو ہے یہ جمع ہے اوابین، اور اواب جو ہے یہ اس کا واحد ہے، اور اس کے معنی ہے کثرت سے توبہ استغفار کرنے والے. اس کا روٹ ہے الف واو با، رجوع کرنا، لوٹنا. اس کی فیملی کا ایک لفظ بتاؤں آپ کو بڑا مزہ آئے گا، ایوب. ایوب وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے نا، لوٹنے والے تھے. تو روٹ کیا ہے؟ الف واو با. تو ایوب میں جو یا ہے وہ حرف علت ہے، آیا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اسی سے تواب ہے، تواب، تواب. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 26 ہے. اس میں آپ کے لیے کوئی بھی میرا نہیں خیال کوئی مشکل لفظ ہے، ہاں ایک ہے، ولا تو بس دیر تبزیرا. تو با زال را، با زال را، یہ اصل میں عربی زبان میں یہ بیج کو کہتے ہیں. جس طرح زمین میں انسان بیج ڈالتا ہے نا، کسان جب بیج ڈالتا ہے دیکھتا نہیں ہے کہ اس کا بیج ادھر ادھر کہاں جا رہا ہے، پھینک رہا ہوتا ہے نا کسان. کبھی آپ نے دیکھا کسانوں کو زمین میں بیج ڈالتے ہوئے؟ تو مٹھیاں بھر بھر کے، اور اب تو مشینوں کے ذریعے ڈالے جاتے ہیں، تو پتہ تو نہیں چلتا بیج کہاں کہاں جا رہے ہیں. تو اسی سے یہ لفظ فضول خرچی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تبذیر. فضول خرچی بھی ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسان اپنے بیج کو ادھر ادھر لٹاتا ہے نا، پھینکتا ہے، اسی طرح انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا ہے، خرچ کرتا ہے، شرعی حد سے تجاوز کرتا ہے. تو اسراف کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا. بعض کہتے ہیں ناجائز کاموں میں خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جائز کاموں میں خرچ کرنا لیکن فضول خرچی کرنا، حد سے بڑھنا، تو یہ لفظ جو ہے تبذیر کے طور پر استعمال ہونے لگا. ہانڈی میں مسالہ ڈالنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہانڈی میں مسالہ بھی ایسے ڈالتی ہیں، اور بعض لوگ تو گرم مسالہ ایسے ڈالتے ہیں جیسے واقعی کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے. خوب مہنگا بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ مسالہ ڈالتے ہیں. اور اسی طرح برتن تو بھر لیا جائے نا، تو اس کے لیے بھی عربوں کے ہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو واحد ہے اس کا بزارتن، اور جمع ہے اس کی بزور، اور ابزار بھی اس کی جمع ہے. پھر آیت نمبر 27 میں بھی اس کی فیملی کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، المبذرین، اخوان. اخوان جو ہے اخی واحد ہے، اخی واحد ہے، اخوان اس کی جمع ہے. انما المؤمنون اخوتن، تو اس کا روٹ کیا ہے؟ کہ الف خا واو ہے اس کا روٹ، اس کے بعد میں واو آتی ہے. اور اسی طرح آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو باپ ہے اب اس کے آخر میں بھی واو آتی ہے. میں نے ایسے یاد کیا تھا، بڑی آسانی ہوگی. پھر اب ابو ہے، آپ لوگ ابو بولتے بھی ہیں نا باز، تو الف با واو روٹ ہے اس کا، اس کے آخر میں بھی واو آ رہی ہے. اسی طرح جو ہے وہ اخ بھائی کو بھی کہتے ہیں، اور اخت بہن کو کہتے ہیں. تو بھائی ہے یا بہن، روٹ ایک ہی ہے، الف خا واو. اسی طرح لونڈی اور غلام ہے، الف میم واو. لونڈی اور غلام کے لیے، نوجوان کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کو یاد کرنا جو ہے اس طرح آسان ہو جائے گا. تو یہ ایٹ لیسٹ یہ دو تین جو ہیں وہ آپس میں اس طرح ملتے ہیں. پھر ہے اچھا آیت نمبر 28 ہے، اور اس میں ترجوحا، راجیم واو، और मनी है उम्मीद के, रिजा भी आप बोलती है ना, रिजा। फिर कौलम मैसूरा, मैसूरा मैसूरा का रूट क्या है? यासीन रा, शाबाश। और इसका लोग नाम भी रखते हैं जैसे युसरा और उस्र, युस्र, मुख्तलिफ तरह से आप ये लफ्ज इस्तेमाल करती हैं। तो आसानी के लिए, नरमी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है मगलूलतन, गैर लाम लाम, असल मानी है किसी चीज को ऊपर ओढ़ना या उसके दरमियान में चले जाना। तो ये जंजीरों को भी कहते हैं, दिलों के अंदर जो हसद और कीने की गिरे लग जाती हैं तो उसके लिए भी आता है गिल। और वैसे भी हम कहते हैं कि उसने बड़ा गुल गुब्बारा मचाया है ना, तो ये इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। उनुक आप पढ़ी चुकी हैं, गर्दन के लिए इस्तेमाल होता है ना, उनुक आम ये लफ्ज इस्तेमाल है। और तब सुतहा और बस्ती, बा सीन तोए, और ये लफ्ज कुशादगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुशादगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपने जो है ये लफ्ज पहले पढ़ा है, याद है आपको कहाँ पढ़ा था? मुझे सिर्फ आप उर्दू में उसकी निशानी ही बता दे तो आपको बोनस नंबर मिल जाए। अभी हाँ वहां तो आएगा, ये भी सही है कि बाज से तिन, कि कुत्ता जो था वो बाजू फैलाए बैठा था। और सूरत अल बकरा में आपने ये लफ्ज पढ़ा था जब, हाँ आप बार बार भी वैसे तो पढ़ती हैं, लेकिन खास तौर पर आपने इसको पढ़ा था जब तालूत और जालूत का वाकया भी पढ़ा था ना, तो वहां भी आपने ये लफ्ज पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हाँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तालूत को दी थी कि जालूत को दी थी। तो तालूत जो था ये मुसलमानों का था, उनका सिपा सलार मुकरर किया था, तो वहां पे आया है ये लफ्ज फाला इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम वजादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, वहां पे बस्ततन लफ्ज आया, तो मेरे जहन में भी उसका ख्याल आया। और ये है सूरत अल बकरा की आयत नंबर 247। तो बहरहाल अच्छी आपने मिसाल दी सूरत कहफ में आगे जो आपने दी, तो शाबाश। इसी तरह आप देंगी ना, आप ना बस रुक ना जाया करें, जैसे आपके पास बस $200 ही दी जमा हुई है या पॉकेट मनी, और आप उसके हजार चीजें सोचती हैं कि मैं इसकी अंगूठी ना बना लूं, नहीं नहीं आजकल वो फलां डिजाइन के कपड़े चल रहे हैं वो ना मंगवा लूं, नहीं नहीं मेरा ये ख्याल है कि फला चीज मंगवा लेती हूँ फला, कितनी चीजें सोचते हैं ना। इसी तरह जो ही लफ्ज सामने से सोचे और कौन से लफ्ज कुरान में बने, यानी अपना दिल इस तरफ लगाना चाहिए हम सबको। तो ये है, आप देखें कि इसकी फैमिली के कितने लफ्ज है यहाँ पे, तबसुतहा बस्ती, फिर उसके बाद आयत नंबर 30 में यबसुतु, वहां पे भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अच्छा यहाँ पर एक और अहम लफ्ज है फता कोदा, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, कौफ आइंदाल कादा भी होता है। और इसी तरह मलूमन लफ्ज जो है, हाँ इसका है लाम वाव मीम, लॉम से है मलामत करना। और मासूरा हासीन रा, हासीन रा जो है इसके मानिए किसी चीज को नंगा करना, उससे पर्दा हटाना। और मासूर होता है जो हार जाता है, जैसे कोई नंगा हो जाए ना, आजिज आ जाए नंगा हो जाए, तो इसी तरह पछताना, हसरत, हसरत इसकी फैमिली का मशहूर लफ्ज है, हसरत करना। तो मासूरा आजिज होना, हसरत करना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यबसुतु आप पढ़ी चुकी, यहाँ पे यबसुतु का ऑपोजिट है यकदिर। फिर है आयत नंबर 31, इसमें लफ्ज है खशियता, इसका रूट क्या है? काशीनिया, दूसरा लफ्ज है और इसके मानी आपको आते हैं डरने के लिए आते हैं। फिर है इमलाक, मीम लाम काफ, तंगदस्ती और मुफलिसी नादारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईया कुम, ईया जो है कलमाए हसर है। खितन कबीरा, खितन खता गलती वगैरह को कहते हैं। और आयत नंबर 32 है آیت نمبر 32 ہے اور اس میں لفظ استعمال ہوا ہے تقربو. روٹ کیا ہے اس کا؟ قاف را با. قرب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اور اسی سے قرابت دار ہیں، اسی سے قربانی ہے، اسی سے قریب ہونا، قریب کا لفظ ہے اور قرب. تو اگر آپ سوچیں گی تو آپ کو بہت سے لفظ اس کی فیملی کے جو ہے وہ نظر آتے چلے جائیں گے. آگے ہے زنا. زنا زنا لفظ جو ہے یہ آپ پڑھیں گی آگے بھی قرآن میں اور اس کا بھی قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ زانونیا. اس کا روٹ ہے زانونیا، بدکاری کرنا، زنا کرنا. تو ناجائز طریقے سے صنفی خواہش کو پورا کرنا، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سا آ. روٹ کیا ہے؟ سین واو حمزہ. سو سے ہے، وہ جو پیچھے بھی آپ نے لے یا سو او پڑھا بھی. پھر ہے اس کے بعد سبیلا، سین با لام. کشادہ اور کھلے راستے کو کہتے ہیں. صراط، تنگ راستے کو کہتے ہیں، مشکل راستے کو کہتے ہیں. پھر آیت نمبر 33 ہے اور اس میں لفظ ہے یوسرف. سین رافا. سین رافا اور اس کے معنی ہوتے ہیں اسراف کرنا، حد سے بڑھنا، فضول خرچی کرنا. منصورہ آیت نمبر 33 کے آخر میں ہے. کیا ہے اس کے معنی؟ نون سواد را. پھر آیت نمبر 34 ہے اور اس میں سارے ہی لفظ آپ کے پہلے کے پڑے ہوئے، کوئی بھی نیا نہیں ہے. مسولہ کا چلے آپ بتا دیں. سین حمزہ لام. شاباش. آیت نمبر 35 ہے، اس میں بھی اوفو. اس کا روٹ کیا ہے؟ وفا یا. وفا کرنا، پورا کرنا. الکیل. کاف یا لام. کیل جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ناپنا، لیکوڈ چیز کو ماپنا، لیکوڈ کو ماپنا. اور کلتم جو ہے یہ کس فیملی کا لفظ ہے؟ یہ نیا ہے. کیل کا ہے. آپ لوگ پریشان ہو گئے، تو میں یہی تو دیکھنا چاہتی تھی کہ ذرا سی شکل بدلتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. تو کیل اور کلتم ملتے جلتے سیم فیملی کے لفظ ہیں. تو کلتم بھی، یہ کیل جو ہے نا یہ ناؤن ہے اس میں، اور کلتم ورب ہے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے یہ بات تو اچھی ہے، نہ آئے تو بھی مسئلہ نہیں. وزنون، یہی اس کا روٹ ہے. وَوْ زَنُون، وزن کرنا، تو بھاری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہے بالقصاص. قاف سین توئے سین، اس کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ قاف سین توئے سین، ہاں اس کے معنی ہیں یعنی ترازو کو ٹھیک طرح سے جو ہے نا تولنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور ترازو کو قسطاس کہتے ہیں. ترازو جو ہوتی ہے نا جس سے میئرمنٹ کی جاتی ہے، اس کے لیے قسطاس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. ترازو آپ کو پتا ہے کسے ہوتا ہے؟ سکیل جو ہوتا ہے جس سے آپ پیمانہ جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے وہ پیمانہ کرتی ہیں، ماپتی ہیں. قرآن میں ترازو کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے، ایک میزان کا ہے اور یہ آپ سورۃ الرحمن میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ترازو کا لفظ. اللہ تطغو فی المیزان. تو میزان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وزن کرنے کا آلہ، کسی وزن کے برابر وزن کرنے کے آلے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور میزان ترازو میں دونوں طرف پڑے ہوئے وزن میں سے ہر ایک کو بھی کہتے ہیں، جیسے تولنا نا. اسی طرح قسطاس ہے، یہ رومی لغت کا لفظ ہے، عربی میں بھی استعمال ہونے لگا. اور اس ترازو کو کہتے ہیں جو بہت حساس ہو، ایسا ترازو جس میں جھکاؤ دیکھنے کے لیے کانٹا ہے، جیسے لسان المیزان بھی استعمال ہوتا ہے، بہت ہی حساس ترازو. کیونکہ میزان کی تو کئی قسطیں ہیں اب تو، جیسے بڑے الیکٹرانک بھی ہیں اور بڑی بڑی अभी आप देखें एयरपोर्ट पे आप जाती हैं तो सब तराजू लगे हुए हैं ना, आपको नजर तो नहीं आ रहा होता अंदर ही अंदर कैसी मशीनें लगी हुई हैं, तो वो सारे क्या है, वो सब मिजान है ना। तो इस ताश ऐसा तराजू है जो बहुत ही नाजुक है, हसास है, मिजान की बजाय वो हसास है। दोनों तरह ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। आयत नंबर 36 में आ जाइए और इसका आयत नंबर 36 में लफ्ज है तकफू, इसका रूट है काफा वो। तो ये लफ्ज जो है काफा वो, ये पीछे लगना या लगाना ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, और वैसे इसके लिए कुरान में इत्तबा का लफ्ज भी आता है ना, इत्तबा करना। और दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल होता है ये है काफा वाओ का। असल में अरबी जबान में मैं इसलिए आपको चाहती कि ये बताऊं कि ये लफ्ज जो है ये बुद्धि के लिए इस्तेमाल होता है, बुद्धि। अब इसके मानी क्या है कि किसी की कफा यकफू, किसी की गुद्दी पर बारना, किसी के पीछे लग जाना, ये गर्दन के पीछे ये वाली जगह है ना। और इसी तरह कफा किसी के पीछे किसी चीज को लगातार लगाना, किसी से काफिया भी है। शायरी में शेर के आखिर में एक हम वजन अल्फाज जो लगाए जाते हैं, तो किसी के पीछे किसी चीज को लगातार लगाना, तो एक जैसे जो है वो जैसे उनमें एक राइम होता है ना, तो वो रखा जाता है। तो इसी तरह पीछे लगाना के तसलसल कायम रहे, किसी चीज के पीछे पड़ जाना, उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आपने पीछे पढ़ा था वकफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और इनके पीछे यके बाद दीगरे पैगंबर हम भेजते रहे। और रीढ़ की हड्डी के मोहरों के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि उसके मोहरे एक के बाद दूसरा आता चला जाता है, तो उसमें इसमें पीछे लगना तसलसुल के मानी फिर पाए जाते हैं। फिर आप देखें कि समा जो है कान को उजुन कहते हैं, कान से जो सुनते हैं ना उसको समात कहा जाता है, सुनना। इसी तरह वल बसरा आइन आंख को कहते हैं, और आंख से जो देखते हैं उसको बसर कहा जाता है। इसी तरह वल फुआद तो दिल को कल्ब कहते हैं, और फुआद जो है वो दिल के अंदर जो एक हसासियत होती है, जज्बात का जो मरकज है, उसके लिए फुआद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। या पहले भी वैसे पढ़ चुकी हैं, मैदे के मुंह पे जो जगह है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा फिर आप चलिए आयत नंबर 37 में, और यहाँ पे तमशी है, तमशी का रूट क्या है, मीम शीन या, इसका मतलब होता है चलना। मराहा मीम रा हा है, और मीमरा हा जो है इसके मानी है इतराना, नाजो अदा से अकड़ अकड़ कर चलना। तो अब चलने के लिए भी बहुत से अल्फाज हैं, तो आम चलना नहीं है बल्कि नाजो अदा से अकड़ अकड़ कर चलना। और आमतौर पर अगर आप देखें तो कुरान में चलने के लिए 9 लफ्ज हैं, और इसमें जो मरहा है ये तीसरा दर्जा है, इसका तीसरा दर्जा है, खुशी से और नाजो अदा से अकड़ अकड़ कर चलना। तखरीका खारा काफ, किसी चीज को बिगाड़ने के लिए फाड़ना, बिगाड़ने के लिए फाड़ना। फिर इसके बाद है तूल, तो वाम तूल तवालत लंबाई के लिए भी इस्तेमाल होता है, तवील तूल, आपने बात को बहुत तूल खींच दिया, और तूल लंबाई के लिए आता है, अर्थ चौड़ाई के लिए और तूल लंबाई के लिए है ना। फिर है सही रूट,
वो
कहां से आ गया, अच्छा हाँ सही हो सीन वो हमजा सू से आ गया, ठीक है। फिर है मकरूहा, इसका रूट क्या है, मीम काफ़रा। फिर है अलहिकमा हा काफ मीम, हा काफ मीम जो है ये किसे कहते हैं, हिकमत को कहते हैं, ये तो बहुत ही आसान है ना। असल में ये मैंने आपको इसके लिए भी एक खास बात बताई थी कि हा काफ मीम जो है इसके मानी है किसी चीज की इसलाह के लिए उसे रोक देना, इसी बिना पर अरब लोग जानवर को लगाम देने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते थे हकामतु दाबा, क्योंकि लगाम जो है वो जानवर को काबू में रखती है। तो इसी तरह मैंने उसको लगाम दी, हकमतु मैंने उसको लगाम दी। तो इस तरह फिर ये लफ्ज जो है किसी चीज के मुतालिक फैसला करने का नाम भी है, और हकीमाना बात मोहकम मजबूत बात के लिए भी आता है, और दनाई वाली बात के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर असल में फिर आप इसके बारे में क्या याद करेंगी, किसी चीज की इसलाह के लिए उसे रोक देना, और याद इसे रखे जानवर को लगाम देना, फिर वही आ गया ना जानवर, तो जानवर को लगाम देना। और जानवर को जब लगाम दी जाती है तो वो रुक जाता है, इधर उधर मुंह नहीं मारता, जैसे कि अब वो हकीम बन गया, जैसे अकलमंद हो गया ना। तो इस तरह फिर ये लफ्ज जो है इल्म, अकल, हिकमत, मार्फत, मजबूती, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वलकद आतैना लुकमानल हिकमता। और वैसे कुरान में हिकमत का लफ्ज जो है, जैसे अल्लाह ताला जब कहते हैं ना कि मैंने फलां नबी को हिकमत अता की, तो दनाई फैसला करने की जो कुदरत है, और जो अल्लाह ताला ने उनको सही पे भेजे उसके लिए भी, और जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर हिकमत का लफ्ज आता है तो उससे मुराद हदीस है, उससे मुराद हदीस है। शतुल का रूट क्या है? लाम काफ या, लाम काफ वो, मलूमन लाम वो मीम, मलामत, मधूरा, दाल हारा, अभी पढ़ा आपने पीछे। और फिर उसके बाद है अस्फाकुम, स्वाद फा वो, पाक साफ होना, इसी से जो है वो सफा है, सफा मरवा जैसे है ना सफा, तो खालिस करना, किसी को उसकी पाकीजगी की बिना पर चुन लेना। पाकिजगी की बिना पर चुन लेना। और फिर अल बनीन आ गया, तो इब्न वाहिद है, बनीन जमा है, और रूट क्या है? बानून वो। अब आपको याद हो गया कि हमने वो आखिर में लगाना है। और फिर यहाँ पर इनासन है, इनासन जो है इसका रूट है हमजा नून सा, और जो है ये लफ्ज मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उनसा, उनसा औरत को कहते हैं, इनासा इसकी जमा है, किसी से तानीस है, मुअन्नस मुअन्नस है। कौलन अजीमा आखिरी लफ्ज है आज के सबक का, रूप का अजीमा, आयन जोए मीम, और ये हड्डी के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी से ये बड़ी बात को भी कहते हैं, बड़ी चीज को कहते हैं।